ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा ने ऐसा अमृत पिला रहे हैं जिसमें दो बातें साथ साथ हो रही हैं। एक है इस पुरानी देह से, पुरानी दुनिया से, पुराना संसार से वैराग्य, एक नफरत पैदा करना, और दूसरे तरफ से एक नशा पैदा करना। वंडर की बात है, आज बाबा ने कई बातें बताई हैं। मुरली के शुरुआत से बाबा ने बच्चों को इतने प्यार से बोला, बच्चे आप मुझे याद करेंगे तो मैं आपके साथ हूं। याद से ही साथ का फायदा, हाथ का फायदा मिलता है। ऑटोमेटिक, कितनी सिंपल बात है। और फिर आज बाबा ने बताया है कि इतिहास में पूरा खेल दो चीजों पर है, भारत की हार और भारत की जीत। वो पवित्र धर्म था, अपवित्र बना, तो हार किस आधार से खाई भारत ने? विकारों के आधार से। तो बाबा किस रूप से आज बड़ी प्यार से, रमणीकता से बच्चों को दूरादेशी बुद्धि बना देता है, पूरा चक्र का आदि मध्य अंत सुना करके दूरादेशी बुद्धि बनाता है। विशाल बुद्धि तब बनती है जब तीनों लोगों का सहर होता है, स्थूल, साकार और निराकार। लेकिन वर्तमान समय जो दूरादेशी बुद्धि होती है वो कभी धोखा नहीं खाती है। तो आज बहुत अच्छी अच्छी बातें बाबा ने बताई है। और लास्ट में क्या है कि एक ही वशीकरण मंत्र याद रखना है, एक बाप दूसरा न कोई, तब बेड़ा पार होती है। तो आज 2 जून 2025 की वाणी है। और मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो, याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। याद से साथ का भी अनुभव होता है, याद से साथ का भी अनुभव होता है, और विकर्म भी विनाश होते हैं। दो फायदे, साथ का फायदा और विकर्म विनाश भी होते हैं। प्रश्न, दूरदेशी बाप बच्चों को दूरादेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? दूरदेशी बाप बच्चों को दूरादेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? उत्तर, आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है, इसका ज्ञान दूरादेशी बाप ही देते हैं। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे, और उसके पहले वैश्य वर्ण के थे। दूर देश में रहने वाला बाप आकर यह दूरादेशी बनने का सारा ज्ञान बच्चों को देती है। पूरा चक्र का ज्ञान देते देते हमारी सारी कहानी न्यूट्रलाइज हो जाती है। गीत जो पिया के साथ है उनके लिए प्रसाद है। ओम शांति। जो ज्ञान सागर के साथ है उनके लिए ज्ञान बरसात है। तुम बाप के साथ हो ना, भल विलायत में हो वह कहां भी हो, साथ हो। याद तो रखते हो ना, जो भी बच्चे याद में रहते हैं वो सदैव साथ में है। कभी कभी हम दादी को पूछते थे, दादी आप याद का चार्ट कैसे रखते हैं, आप कितने समय तक याद में रहते हैं? तो दादी जानकी जवाब देती थी, मुझे ये सवाल पूछो ना कि मैं कितना समय याद में नहीं रहती हूं। तो इसीलिए ऐसे लगता था कि जैसे दोनों का एक जुड़ाव था। तो बाबा कहते हैं जो भी बच्चे याद में रहते हैं वो सदैव साथ में है। याद में रहने से साथ रहते हैं और विकर्म विनाश होते हैं। फिर शुरू होता है विकर्मजीत संवत। फिर जब रावण राज्य होता है तब कहते हैं राजा विक्रम का संवट। वह विकर्मजीत, वह विक्रमी। अभी तुम विकर्मजीत जीत बन रहे हो, फिर तुम विकर्मी बन जाएंगे। इस समय सभी अति विकर्मी है, किसको भी अपने धर्म का पता नहीं है। आज बाबा हमारे साथ खेल कर रहा है, तो आज बाबा एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं। सत्युग में देवताएं यह जानते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं? जैसे तुम समझते हो हम हिंदू धर्म के हैं, कोई कहेंगे हम क्रिश्चियन धर्म के हैं। वैसे वहां देवताएं अपने को देवी देवता धर्म का समझते हैं क्या? विचार की बात है ना, समझते हैं क्या कि हम देवी देवता धर्म है? लक्ष्मी नारायण नहीं समझते हैं? विचार की बात है ना, वहां दूसरा कोई धर्म तो है नहीं जो समझे कि हम फलाने धर्म के हैं, कोई कंपैरिजन तो है ही नहीं। यहां बहुत धर्म है तो पहचान देने के लिए अलग अलग नाम रखे हैं। वहां तो है ही एक धर्म, इसीलिए कहने की दरकार नहीं रहती है। देवी देवताएं एकदम सोल कॉन्शियस, बिल्कुल रॉयल बुद्धू, भान ही नहीं है कि हम किसके राज्य में हैं, क्या है। तो वहां तो है ही एक धर्म, इसलिए कहने की दरकार नहीं रहती है कि हम इस धर्म के हैं। उनको पता भी नहीं है कि कोई धर्म होती है, उनकी ही राजाई है। अभी तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवी देवता और कोई को कहा नहीं जा सकता। पतित होने कारण अपने को देवता कह नहीं सकते, पवित्र को ही देवता कहा जाता है। वहां ऐसी कोई बात होती नहीं, कोई से भेंट नहीं की जा सकती। अभी तुम संगम युग पर हो, जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से स्थापन हो रहा है। वहां तो धर्म की बात ही नहीं है, है ही एक धर्म। यह भी बच्चों को समझाया है। यह जो कहते हैं महाप्रलय होती है अर्थात कुछ भी नहीं रहता, यह भी रॉन्ग हो जाता है। आत्मा अविनाशी है, प्रकृति भी अविनाशी है, कभी भी प्रलय नहीं होती है। रूप बदलता है लेकिन प्रलय नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं ये जो कहते हैं महाप्रलय होती है अर्थात कुछ भी नहीं रहता, यह भी रॉन्ग हो जाता है। बाप बैठ समझाते हैं राइट क्या है। शास्त्रों में तो जलमाई दिखाई दी है। बाप समझाते हैं सिवाय भारत के बाकी जलमाई हो जाती है। बाइबल में दिखाते हैं ना, जब अति तमो प्रधानता में पहुंचे थे तभी भगवान ने बाढ़ रचा था, जिसमें उसका एक वफादार बेटा नोआ करके नाम था। तो उसको बोला था तुम अपना परिवार और जानवरों की जाति का दोनों लोगों को एक जहाज बना करके उसमें डालो और 40 दिन रात तक बाढ़ चला और पूरे संसार में जैसे पानी बिल्कुल ढक गया, पूरा बढ़ गया था। फिर 40 दिन के बाद वो जहाज, जो एक नाव, बड़ा बड़ा नाव होता है ना, वो एक माउंट पर पहुंचा और वहां पे नोआ ने सारे जानवरों को मना छोड़ा। तब फिर कहते हैं कि भगवान ने उस समय वायदा दिया कि दोबारा बाढ़ नहीं लगाऊंगा। तो ये सारी बाइबल की कहानी है। और वैसे तो विनाश के समय अभी भी देख रहे हैं ना, कितनी बार तूफान आती है, एक धक में सब कुछ खलास कर देती है। तो बाबा कहते हैं शास्त्रों में जलमयी दिखाई दी है, बाप समझाते हैं सिवाय भारत के बाकी जलमयी हो जाती है। इतनी बड़ी सृष्टि क्या करेंगे, एक भारत में ही देखो कितने गांव हैं। पहले जंगल होता है, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है। वहां तो सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के ही रहते हो। यह तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में बाबा धारणा करा रहे हैं। अभी तुम जानते हो ऊंच से ऊंच शिव बाबा कौन है, उनकी पूजा क्यों की जाती है, अख आदि के फूल क्यों चढ़ाते हैं। वह तो निराकार है ना, कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज तो होती ही नहीं। तब क्या है जिसको फूल आदि चढ़ाते हैं। पहले पहले पूजा उनकी ही होती है। क्यों पहले पूजा उनकी होती है, क्योंकि मंदिर भी उनके बनते हैं, क्योंकि भारत की और सारी दुनिया के बच्चे की सर्विस करते हैं। तो पहले शिव बाबा का मंदिर बनता है, मनुष्यों की ही। मनुष्यों की ही सर्विस की जाती है ना। इस समय तुम अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहला सकते। तुमको पता भी नहीं था कि हम देवी देवता थे, फिर अभी बन रहे हैं। अभी बाप समझा रहे हैं तो समझना चाहिए यह नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे न सके। उनको ही कहते हैं ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। गाया हुआ है रचता और रचना को, रचता और रचना को ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते, नेति नेति करते गए हैं। जैसे छोटे बच्चे को नॉलेज है क्या? जैसे बड़े होते जाएंगे बुद्धि खुलती जाएंगी, बुद्धि में आता जाएगा विलायत कहां है, यह कहां है। तुम बच्चे भी पहले इस बेहद की नॉलेज को कुछ भी नहीं जानते थे। यह भी कहते हैं भल हम शास्त्र आदि पढ़ते थे परंतु समझते तो कुछ भी नहीं थे। मनुष्य ही इस ड्रामा में एक्टर है ना। वंडर की बात है, पाए पैसे का ज्ञान था, कुछ भी नहीं समझते थे, फिर भी बड़ी बड़ी बातें करते थे। सारा खेल दो बातों पर बना हुआ है। कौन सी दो बातें? भारत की हार और भारत की जीत। और जीत किस आधार से होती है? पवित्रता की बल के आधार से हमारी जीत होती है। जो योग लगाकर पवित्र बनते हैं तब हम पूरे भारत पर राज्य करते हैं। भारत में सत्ययुग आदि के समय पवित्र धर्म था, इस समय है अपवित्र धर्म। अपवित्रता के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते हैं, फिर भी क्या नाम दे देते हैं मनुष्य, फिर भी अपने को श्री श्री नाम रखा देते हैं। लेकिन श्री माना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कहां ही जाता है पवित्र देवताओं को। श्रीमत भगवान वाच्य कहा जाता है ना। अब श्री कौन ठहरे जो बाप के सम्मुख सुनकर श्री बनते हैं, या जिन्होंने अपने को श्री श्री कहलाया है, श्री कौन ठहरे? बाप के कर्तव्य पर जो नाम पड़े हैं वह भी अपने ऊपर रखा दिया है। काम तो बाप ने किया है और नाम बच्चों ने ले लिया। तो बाबा कहते हैं यह सब है रेजगारी बातें, फिर भी बाप कहते हैं बच्चों एक बाप को याद करते रहो, यही वशीकरण मंत्र है। तुम रावण पर जीत पहन जगत जीत बनते हो, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। यह शरीर तो यहां पांच तत्वों का बना हुआ है, बनता है, छूटता है, फिर बनता है। अब आत्मा तो अविनाशी है ना, अविनाशी आत्माओं को अब अविनाशी बाप पढ़ा रहे हैं संगम युग पर। बल कितने भी विघ्न आदि पड़ते हैं, माया के तूफान आते हैं, तुम बाप की याद में रहो। ऑर्डिनेंस है, कितने भी विघ्न आएंगे पड़ते हैं, माया के तूफान आते हैं, तुम बाप की याद में रहो। तुम समझते हो हम ही सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने हैं। तुम्हारे में भी नंबर वार जानते हैं, तुम बच्चों की बुद्धि में है। हमने ही पहले पहले भक्ति की है, जरूर जिसने पहले पहले भक्ति की है उसने ही क्या किया होगा पहले पहले, पहले पहले भक्ति की है उसने ही शिव का मंदिर बनाया, क्योंकि धनवान भी वह होते हैं ना। बड़े राजा को देख, और भी राजाए और प्रजा भी करेंगे, यह सब है डिटेल की बातें। एक सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है, फिर कितने वर्ष लग जाते हैं समझाने में। ज्ञान तो सहज है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता है जितना याद की यात्रा पर लगता है। ज्ञान तो एक सेकंड की रियलाइजेशन होती है, एक सेकंड में बिजली ऑन, लाइट ऑन हो जाती है, लेकिन निरंतर स्मृति में रहना उसमें बहुत बड़ी मेहनत है। स्मृति में रहते हैं तब तो बल जमा होता है ना, तब तो पवित्रता का बल जमा होता है। तो बाबा कहते हैं जितना फिर कितने वर्ष लग जाते हैं समझाने में। ज्ञान तो सहज है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता है जितना याद की यात्रा पर लगता है। पुकारते भी है बाबा आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाओ। सब कहेंगे पतित से पावन बनाओ। पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, इनको पतित दुनिया कहेंगे। पतित दुनिया कहते हुए भी अपने को समझते नहीं, खुद को पतित नहीं समझते हैं। भल मंदिरों में जाकर के मूर्तियों के सामने बोलेंगे हम पापी नीच है, लेकिन बाहर आकर के सब कुछ भूल जाएंगे। तो बाबा कहते हैं पतित दुनिया कहते हुए भी अपने को समझते नहीं है, अपने प्रति घृणा नहीं रखते। अभी बाबा उदाहरण देते हैं, देखो तुम किसके हाथ का नहीं खाते हो तो क्या कहते हैं, तो कहते हैं हम अछूत है क्या। अरे तुम खुद ही कहते हो ना, पतित तो सब है ना, तुम कहते भी हो हम पतित है, ये देवताएं पावन है, तो पतित को क्या कहेंगे। गायन है ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए, विष तो खराब है ना। बाप कहते हैं यह विष तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है, परंतु इनको पॉइजन समझते थोड़ी है। ये वंडर की बात है, विकर्म होने के कारण एक विकारों का कल्चर बन गया, और जब एक कल्चर बनता है तो हम उस कल्चर में एडजस्ट होते हैं। भी हम कोई शहर में थे सेवा के लिए, तो वहां की बहन ने कहानी सुनाई कि कपल आया था सेंटर पे, तो बहन ने तो बाबा को पहचान लिया, भाई ने तो बस ऐसे ही, बहन आ रही थी पत्नी आ रही थी तो उसके पीछे पीछे आया, लेकिन कुछ पहचान नहीं था। तो थोड़े समय के बाद वो भी थोड़ा विरोध उसने शुरू किया कि क्या ज्ञान दे रहे हैं, पति पत्नी को भाई बहन बना रहे हैं आप लोग, और आप ही हमको दुखी बना रहे हैं, क्योंकि विष नहीं मिलता है तो हम औरों के पास जाना होता है। देखो कितना जैसे दिमाग फिर गया है इनका, पॉइजन का एक कल्चर बन गया है, पॉइजन के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं। जैसे आमली अमल बिगर रह नहीं सकता, माना जो एडिक्शन होता है उसके बिना रह नहीं सकता है, शराब की आदत वाला शराब बिगर रह नहीं सके। लड़ाई का समय होता है तो उनको शराब पिलाकर नशा चढ़ाए लड़ाई पर भेज देते हैं। नशा मिला बस समझेंगे हमको ऐसा करना है। उन लोगों को उन लोगों को तो मरने का डर भी नहीं रहता है। कहां भी बॉम्ब्स ले जाकर बॉम्ब्स सहित गिरते हैं। वर्ल्ड वॉर टू में ऐसे ही हुआ था, जो जापान में उदाहरण है कि जो कैमिकाजी फाइटर पायलट्स थे उनको पहले बहुत दारू पिला करके नशा चढ़ाते थे, तो उनका बम क्या था, वो जो जिस प्लेन पे वो चलाते थे ना वही उनका बम था, तो प्लेन के साथ ही वो सब गिरते थे और पूरा नाश कर देते थे। लेकिन कोई भी मना मरने की कुछ डर नहीं था उस समय पे। तो ये बाबा कहते हैं कहां भी बॉम्ब ले जाकर बॉम्ब सहित गिरते हैं। गायन भी है, मुसलों की लड़ाई लगी, राइट बात अभी तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो, आगे तो सिर्फ पढ़ते थे, पेट से मुसल निकाले फिर यह किया, अभी तुम समझते हो पांडव कौन है, कौरव कौन है। स्वर्गवासी बनने के लिए पांडवों ने जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ किया। हम सभी पांडव बैठे हैं ना, यही हमारा मुख्य पुरुषार्थ है, देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ किया। तुम अभी यह पुरानी जुत्ती छोड़ने का पुरुषार्थ करते हो, कहते हो ना पुरानी जुत्ती छोड़ नई लेनी है। बाप बच्चों को ही समझाते हैं, बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूं, मेरा नाम है शिव, शिव जयंती भी मनाते हैं। भक्ति मार्ग के लिए कितने मंदिर आदि बनाते हैं, नाम भी बहुत रख दिए हैं, देवियों के भी ऐसे नाम रख देते हैं। इस समय तुम्हारी पूजा हो रही है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो, जिसकी हम पूजा करते थे वह हमको पढ़ा रही है। जिन लक्ष्मी नारायण के हम पुजारी थे वह अभी हम खुद बन रहे हैं। यह ज्ञान बुद्धि में है, सिमरण करते रहो फिर औरों को भी सुनाओ। बहुत है जो धारणा नहीं कर सकते। अभी बाबा रहम दिल बन रहा है, कहते हैं बहुत है जो धारणा नहीं कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं जास्ती धारणा नहीं कर सकते हो तो हर्जा नहीं, याद की तो धारणा है ना। बहुत एक क्लेवर जवाब है, क्योंकि याद में ही सब कुछ भरा हुआ है, गुण ज्ञान शक्ति स्नेह प्यार सब कुछ याद में भरा हुआ है। तो बाबा कहते हैं याद की तो धारणा है ना, बाप को ही याद करते रहो। जिनकी मुरली नहीं चलती है, जिनकी मुरली नहीं चलती है तो यहां बैठे सिमरन करें। यहां कोई बंधन झंझट आदि है नहीं, घर में बाल बच्चों आदि का वातावरण देख वह नशा गुम हो जाता है। यहां चित्र भी रखे हैं, किसको भी समझाना बहुत सहज है, वो लोग तो गीता आदि पूरी कंठ कर लेते हैं। सिख लोगों को भी ग्रंथ कंठ रहता है, तुमको क्या कंठ करना है, बाबा पूछते क्या कंठ करना है, बाप को। तुम कहते भी हो बाबा यह है बिल्कुल नई चीज, यह एक ही समय है जबकि तुमको अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। 5000 वर्ष पहले भी सिखाया था और कोई भी ताकत नहीं जो ऐसे समझा सके। ज्ञान सागर है ही एक बाप, दूसरा कोई हो न सके। ज्ञान सागर बाप ही तुमको समझाते हैं। आजकल ऐसे भी बहुत निकले हैं जो कहते हैं हमने अवतार लिया है, इसीलिए सच की स्थापना में कितने विघ्न पड़ते हैं। आज देखो ना, कई जगह पे बाबा मम्मा के अवतार निकले हैं। अभी एक मास पहले बीबीसी पे एक आर्टिकल आया था कि अभी एक नई अवतार निकली है, उसको गॉड वुमन कहते हैं। कहती है मैं माँ की अवतार हूं। तो बीबीसी ने पूरा आर्टिकल कवर किया इसके ऊपर, वंडरफुल। तो बाबा कहते हैं आजकल ऐसे भी बहुत निकले हैं जो कहते हैं हमने अवतार लिया है, इसलिए सच की स्थापना में कितने विघ्न पड़ते हैं। परंतु क्या गाया हुआ है? गाया हुआ है सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। अब तुम बच्चे बाप के पास आते हो तो तुम्हारी दिल में कितनी खुशी रहनी चाहिए। आगे यात्रा पर जाते थे तो दिल में क्या आता था? अभी घर बार छोड़ यहां आते हो तो क्या ख्याल आते हैं? हम बाप दादा के पास जाते हैं, बाप ने यह भी समझाया है मुझे सिर्फ शिव बाबा कहते हैं, जिसमें प्रवेश किया है वह है ब्रह्मा। बिरादरियों होती है ना, पहली पहली बिरादरी ब्राह्मणों की है, फिर देवताओं की बिरादरी हो जाती है। अभी दूरदेशी बाप बच्चों को दूरादेशी बनाते हैं। तुम जानते हो आत्मा कैसे सारे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आई है? इसका ज्ञान दूरादेशी बाप ही देते हैं। तुम विचार करेंगे अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे। हमारा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बाबा ग्रेट ग्रेट क्यों है ग्रैंडफादर? एक तो ईश्वर का रथ है और दूसरा प्रजा पिता है, आदि देव है। और ये वंडर की बात अभी सुनो, हमारा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट शूद्र, ग्रेट वैश्य, ग्रेट क्षत्रिय, उनके पहले ग्रेट ब्राह्मण थे। वर्णों में पसार होकर के भी हम ग्रेट रहे हैं क्योंकि ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के बच्चे हैं। दूर देश में रहने वाला बाप आकर दूर देश का सारा ज्ञान देते हैं बच्चों को। तुम जानते हो हमारा बाबा दूर देश से इसमें आते हैं। यह पराया देश पराया राज्य है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है और वह है ज्ञान का सागर। स्वर्ग का राज्य भी उनको देना है। श्री कृष्ण थोड़ी देंगे, शिव बाबा ही देंगे। श्री कृष्ण को बाबा नहीं कहेंगे, बाप राज्य देते हैं। बाप से ही वर्षा मिलता है। अभी हद के वर्षे सब पूरे होते हैं, धूल मिट्टी में खत्म हो जाते हैं हद के वर्षे। सत्युग में तुमको यह मालूम नहीं रहेगा कि हमने यह संगम पर 21 जन्मों का वर्षा लिया हुआ है। यह अभी जानते हो हम 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए ले रहे हैं। 21 पीढ़ी यानी पूरी आयु। जब शरीर बूढ़ा होगा तब समय पर शरीर छोड़ेंगे, जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नई ले लेता है। हमारा भी पार्ट बजाते बजाते यह चोला पुराना हो गया है। कितना बाबा वैराग्य दिला रहे हैं पराई संसार पुरानी दुनिया को। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, तुम्हें ही ब्रह्मरी कहा जाता है। तुम कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाती हो। तुम्हें कहा जाता है कि कीड़े को ले आकर बैठ भूभू करो। ब्रह्मरी भी भूभू करती है, फिर कोई को तो पंख आ जाते हैं, कोई मर जाते हैं। मिसाल सब अभी के है। तुम लाडले बच्चे हो ना, बच्चों को नूरे रतन कहा जाता है। बाप कहते हैं नूरे रतन, तुमको अपना बनाया है तो तुम भी हमारे हुए ना। ऐसे बाप को जितना याद करेंगे पाप कट जाएंगे, और कोई को भी याद करने से पाप नहीं कटेंगे। लास्ट में बाबा दिल ले लेता है। ऐसे बाप को जितना याद करेंगे पाप कट जाएंगे, और कोई को भी याद करने से पाप नहीं कटते हैं। अच्छा, नीचे नीचे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी जुत्ती में जरा भी ममत्व न रहे। इस पुरानी जुत्ती में जरा भी ममत्व न रहे। दूसरा, सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की भूभू कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है। सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की भूभू कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है। वरदान, बहुत ही सुंदर वरदान है आज का। तो अमृत वेले का महत्व जानकर, अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले, खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। अमृत वेले वरदाता भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखा खींचवाने चाहो खींचवो, खींचवा लो, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लवफुल है। इसीलिए मालिक बनो और अधिकार लो। खजाने पर कोई भी ताला चाबी नहीं है। उस समय सिर्फ माया के बहानेबाजी को छोड़ एक संकल्प करो कि जो भी हो जैसी भी हो आपकी हो। पूरे माया के एक्सक्यूजेस को छोड़ करके बस एक ही संकल्प करो कि जो भी हो जैसी भी हो आपकी हो। मन बुद्धि बाप के हवाले कर तख्त नशीन बन जाओ, तो बाप के सर्व खजानों के, बाप के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे। स्लोगन, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएंगी। सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएंगी। इसीलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। और आज का अव्यक्त इशारा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ, जो आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ ही न हो। लेकिन निरंतर आत्म अभिमानी जिससे कर्मेंद्रियों के ऊपर संपूर्ण विजय हो जाए, हरेक कर्मेंद्रिय सतोप्रधान स्वच्छ हो जाए, देह के पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मरजीवा हो जाए, इसके लिए अंतर्मुखी बनो। इसी पुरुषार्थ से ही नंबर बनेंगे। और आज 2 जून मम्मा का मास है, तो आज मम्मा की पॉइंट है, सत्यता का गुण और पवित्रता की शक्ति में संपन्न। जैसे मम्मा अपने सत्य स्वरूप में सदा स्थित रहे, पवित्रता की देवी बन गई, उनके सामने कोई अपवित्र आत्मा ठहर भी नहीं सकती थी, उनकी दृष्टि में पवित्रता की ऐसी शक्ति थी जिससे आसुरी पवित्र संस्कार वाली आत्माओं के अशुद्ध संकल्प भी परिवर्तन हो जाते थे। ऐसे हम सभी अपने सत्य स्वरूप, आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करें, आत्मा को देखें और नेचुरल आत्म अभिमानी स्थिति बनाए। ओम शांति शांति शांति।
ओम शांति। हम सभी जानते हैं शांतिवन में संत सम्मेलन चल रहा है, और कल भी हमारी क्लास की शोभा बढ़ाने के लिए कुछ संत पधारे थे, और आज भी मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश कटनी से 3 संत आए हैं, बैठे हैं यहाँ पर। हाँ, आपसे निवेदन है कृपया आप मंच पर पधारें। कटनी जो मध्य प्रदेश में सिविल लाइन सेंटर बीके लक्ष्मी बहन जी के सेंटर से आप 3 संत महात्माएं हमारे बीच में पधारे हैं। सभी से निवेदन है थोड़ी देर के लिए बैठेंगे और हम इनका सम्मान करते हैं कर्तन ध्वनि के द्वारा। आपका परिचय हम दे देते हैं संक्षिप्त में। पहले है संत त्यागी जी महाराज। आप ज्ञान तीर्थ स्वर्ग धाम कटनी मध्य प्रदेश से पधारे हैं, और आपकी बहुत विशेषता यह है कि आप शंख ध्वनि बहुत प्रखर करते हैं, और हम वो शंख ध्वनि सुनेंगे भी आपसे। और दूसरे हैं पुष्पेंद्र जी महाराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्री प्रेम रामायणम जन सेवा संस्थान चित्रकूट धाम मध्य प्रदेश, और तीसरे कथावाचक राम विश्वास जी लक्ष्मी नारायण मंदिर कटनी से आप पधारे हैं। आपके आने से हमारी सभा में एक अलग ही खुशी के प्रकंपन फैल चुके हैं और हम आपके आने से बहुत प्रसन्न हैं महाराज जी। और दो दो शब्द हम आपसे सुनना चाहेंगे, जो भी आपके मन के उद्गार हैं, और फिर हम शंख ध्वनि भी आपसे सुनेंगे महाराज जी को।
विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम शांति। आप सभी पवित्र आत्माओं के दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है इस माउंट आबू की पवित्र धरा में, भारत के केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश के कटनी जिले के ज्ञान तीर्थ स्वर्गधाम विलायत कला से। हम लोगों को तपस्या करके आना पड़ा आप लोगों के दर्शन करने के लिए। निश्चित ही आप लोग बड़े तपस्वी हैं, आप लोगों की साधना बड़ी है, इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं है। हम लोग जिस उद्देश्य से निकले हैं उसका मूल उद्देश्य यह है जो हमने समझा, आपने समझा, हमारे जो जीवन की यात्रा है, हमारे मतलब हम सबके, कि संपूर्ण राष्ट्र में शांति, आनंद, प्रेम, समर्पण, यही तो चाहिए ना। हम सब परमपिता परमात्मा की सबसे अच्छी संतानें हैं। लोग कहते हैं कि मैं अधम हूं, पापी हूं। हम कहते हैं कि हम परमपिता परमात्मा की सबसे अच्छी संतानें हैं। और एक जो लौकिक पिता होता है वो चाहता है कि मेरी संतानें मुझसे अच्छी बने। तो जब एक संसारी पिता है जिसका एक छोटा सा संबंध है, वो चाहता है कि मेरी संतानें अच्छी बने, मुझसे अच्छी बने, तो परम पिता परमात्मा क्या चाहते होंगे, यही प्रश्न भी है और यही उत्तर भी है। निश्चित ही हमारे परम पिता परमात्मा अपने बच्चे को अपने से अच्छा, अपने से ऊंचा उठाना चाहते हैं। अब बच्चे की जिम्मेदारी क्या है? क्या सिर्फ जीवन यापन करना, सोना खाना, यहीं तक सीमित है? नहीं। तो हमारा जो उद्देश्य जीवन का वो ये है कि जो आनंद हमको प्राप्त हुआ है, जो अनुभूति हमको मिली है, जो प्रेम हमने पाया है, वो और लोगों तक भी बांटना होगा। उससे क्या होगा? जो चीज आपने पाई है यदि वो और लोगों तक देंगे, जब आप बांटने वाले बन जाएंगे तो निश्चित रूप से आपने बांटने वालों की संख्या बढ़ा दी, क्योंकि आप जैसे होंगे वैसा ही समाज निर्मित होता है। आज हमने आप अभी ध्यान करते समय आपको जो बोला कि जयंती मंगलाकाली, क्यों इसी से शुरुआत की हुई। यहां पर जितनी देवियां हैं ये सब आदिशक्ति परम्बा का ही रूप है। अब अगर कोई कहे इस बात को सुनने के बाद कि ये सब देवियां हैं क्या इनसे गलतियां नहीं होंगी, जीवन में अभी तक ऐसा कोई नहीं देखा गया कि जो पूर्ण हो। अपूर्णता सबके जीवन में है, कोई बहुत अच्छा बोलता है तो बहुत सुंदर नहीं होगा, कोई बहुत अच्छा बोलता है सुंदर है, हो सकता है लंबाई उसकी ठीक नहीं होगी, मतलब कुछ ना कुछ यदि किसी में हम कमी निकालने पर आए तो कमियां ढेर सारी निकाली जा सकती हैं। लेकिन हमने जितना समझा है, हम पूर्ण ज्ञानी नहीं है, इसलिए हमने जितना समझा है कि अगर हम अच्छाई पर पूरा ध्यान दें तो एक पार्ट तो हमारा अलग हो गया कि कमियों वाला पार्ट रहेगा ही नहीं जीवन में। भाई मैं देख रहा हूं कि आप लोग श्वेत वस्त्र में यहां शांति का संदेश देने वाले देवी देवता विराजमान हैं। हमारी यात्रा भी तो यही है ना, हम भोजन शिक्षा संस्कार पर ही काम कर रहे हैं और हम भी ये कहते हैं कि नरसे नारायण बनने की हमारी यात्रा है। हमारे आश्रम के जो बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चों पर, अभी आज हमको हिस्ट्री हॉल में बहन जी ने दिखाया, लक्ष्मी बहन जी ने, हमारी लक्ष्मी बहन जी कटनी की टॉप मोस्ट बहन जी हैं, आप लोगों से भी अच्छी हैं, ठीक है ना भाई। हमने जिसके साथ में समय दिया हम तो उसको अच्छा कहेंगे ना, अभी आप लोगों के साथ समय देंगे तो आपको फिर परखेंगे देखेंगे। लेकिन निश्चित ही लक्ष्मी बहन जी ने बताया कि हमारी बहन जी जो आप जिनसे अभी मिलने जा रहे हैं वो हमसे भी अच्छी हैं। हमने उनको अच्छा कहा और उन्होंने कहा कि हमसे अच्छी बाकी सारी बहन जी हैं, तो उसके लिए जो है हमको मजबूरन आपकी तारीफ करनी ही पड़ेगी कि उन्होंने आपको अच्छा कहा है। तो सोचिए जब हमने वहां अभी देखा, हृदय की बात आपको बता रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि हमको तो मालूम भी नहीं था और हम लोगों को तो कुछ याद भी नहीं रहता, बस याद एक ही रहता है कि परमपिता परमात्मा की याद में मस्ती में रहो, कहां जा रहे हो जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा और जो करवाओगे। हम तो इसीलिए किनारे जाके पीछे बैठ गए थे कि बढ़िया बहन जी की वाणी का लाभ मिलेगा। लेकिन अभी देखिए दो लाभ मिले, बहन जी की वाणी का लाभ मिला श्रोता रूप में बढ़िया, और आप लोगों के दर्शन का लाभ मिल रहा है यहां सामने से, तो डबल लाभ तो हमको मिल गया सुबह सुबह। अभी तो देखिए 8 बजा है और इतना लाभ मिल गया, अभी पूरा दिन तो हमारा पूरा जीवन कितना बढ़िया जाएगा। तो जब हम हिस्ट्री हॉल में देख रहे थे ब्रह्मा बाबा जी का जो शुरुआत से, तो उन्होंने बच्चों को लेकर काम किया, मैं इसलिए बात कर रहा हूं, तो मुझे लगा कि मैं भी बच्चों के साथ में, और ऐसा नहीं, समाज का बड़ा विरोध होता है, उस विरोध को हम सह रहे हैं। बच्चों को जब हम भोजन कराते हैं, बच्चों को जब अच्छे संस्कार देते हैं तो क्या बोलते हैं लोग मालूम, ये अपने जैसा बना देंगे। बात तो ठीक कह रहे हो, हम तो चाहते हैं कि अपने जैसा, लेकिन हम ये नहीं चाह रहे हैं कि आप सिर्फ इस वेश को पहनकर हमारे जैसा बने। आप किसी भी वेश में रहें, किसी भी देश में रहें, लेकिन आपके अंदर द्वेष नहीं रहना चाहिए। देश कोई भी हो सकता है ना, ड्रेस कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर द्वेष खत्म हो गया, सिर्फ प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम, तो हम कहते हैं कि बात तो आपकी ठीक है कि हम बनाना तो अपने ही जैसा चाहते हैं। क्योंकि जिस दिन ब्रह्मा बाबा जी ने ईश्वरी विश्वविद्यालय का बीजारोपण किया होगा, उसकी कल्पना शायद ही कोई कर सके। आज लाखों लाख लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। एक विशाल वृक्ष जो ब्रह्मा बाबा ने तैयार किया है, निश्चित ही आप लोग उसमें पानी सींच रहे हैं, उसमें खाद डाल रहे हैं, और ये विशाल वृक्ष बढ़ता ही चला जा रहा है। और साथ साथ ये वृक्ष तो विशाल हो रहा है, इसके ही जैसे और बहुत सारे वृक्ष तैयार हो रहे हैं जगह जगह, पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में। जैसा कि हमने सुना कि लगभग 147 देशों में ब्रह्म कुमारी श्री प्रजापिता विश्वविद्यालय का कार्य बड़ी ही गति से चल रहा है। क्योंकि जो गति हमको दिखती है वो गति हो सकता है कि कम हो, लेकिन वो गति कमजोर नहीं होती है और हम समझ सकते हैं कि समय की अभी जो है आप लोगों को बड़ी जरूरत है, आपका पूरा दिन है और हम भी यात्रा पर ही निकले, हमारी तो पूरी जीवन यात्रा ही इसके लिए है। भोजन शिक्षा संस्कार हमने आपको बताया, हम पूरे भारत में संस्कारशाला संस्कार केंद्र खोल रहे हैं, क्योंकि आप लोग ही काम कर रहे हैं इसलिए आपसे बताना भी जरूरी है। उसी दिशा पर सिर्फ और सिर्फ हमारा ये समझ लीजिए कि वस्त्र का रंग अलग है बस, बाकी आपके उद्देश्य हमारे उद्देश्य एक हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताया पतये नमः। ओम शांति, ओम शांति। भाई आपके नगरी में बैठे हैं, थोड़ा जोर से तो बोलिए ओम शांति। कहते हैं शिव बाबा की महफिल को शिव बाबा ही सजाते हैं, पांडव भवन में वही आते हैं जिसको मेरे शिव बाबा बुलाते हैं, क्योंकि बिना उसकी मर्जी के यहाँ कोई आ नहीं सकता है। कहते परमात्मा की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है, यहाँ जितने बैठे हैं सब हिल रहे हैं क्योंकि हिलाने वाला तो वही है। अपन सो करके जब उठते हैं ना तो नहीं जाने कितने सोते रहते हैं, तो सबसे बड़ा धन्यवाद तो उसका यही है कि अपन को डेली उठाता है और खिलाता है। अपन उसके लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं कर पाते। वाणी उसने दी है, जवान उसने दी है, हाथ पैर उसने दिए, अपन उसके लिए क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। करते हैं लोगों को ज्ञान तो सब देते, धारण कोई नहीं करना चाहता। जो धारण करता है वो ज्ञान देता नहीं, क्योंकि जब परमात्मा की छवि दिखती है ना तो मुख से बोलना नहीं आता, अश्रु धारा निकलती है, क्योंकि ये अनुभव हम करके बैठे हैं। मम्मा है हमारे, सब लोग बोलते हैं कि आप कुछ अनुभव बताइए, अब जिस अनुभव को हमने पा लिया है उस बाणी से कुछ निकल सकता है क्या? यहाँ तो कर तो ठीक है, यहाँ तो बोलते कर में शिव जी का वास है, जो बाबा के कर्म भूमि में, यहाँ तो वो कर भी नहीं हमको दिखता है। यहाँ ये शुद्धता है, सब वातावरण है, अब यहाँ कर कहाँ है? कर तो वहां होता है कि जो पत्थर हो, चट्टान हो, जो लोग तपस्या करने के लिए जाते तो उनके लिए वो कर दिखता है, तो उसमें परमात्मा को प्राप्त करते। यहाँ तो सारी शक्तियां बैठी, जब शक्तियों को पा लिया है तो शिव तो अपने आप से आ जाएगा, शिव को पाने की आवश्यकता नहीं। पहले पहचानना होगा कि हम कौन है, जब अपने आप को पहचान लिया इसलिए तो बोलते हैं कि पवित्रता बनो। पवित्रता क्यों बनाते, पवित्रता इसलिए तो बनाते हैं, अगर शिव को पाना है तो पहले पवित्रता में तो जाना पड़ेगा। जब पवित्रता में जाएंगे तो शिव को ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये तो आदि शक्तियां बैठी हुई हैं, क्योंकि परमात्मा की ही दयन है ये सब। इतना बड़ा संसार है, सब क्यों नहीं धारण करना चाहते हैं, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं कि शक्तियां होती क्या है। सबके अंदर शक्तियां होती है, केवल उसको पहचानना होता कि हमारे अंदर कौन सी शक्ति है। जिस दिन शक्तियों को पहचान लिया तो सबको पहचानने की आवश्यकता नहीं है, और ये दो आंखों से सबको नहीं पहचाना जा सकता है, उसके लिए तीसरा नेत्र होता है मन। अगर मन को आपने कोमल बना लिया ना तो कहीं पहचानने की आवश्यकता नहीं। और एक बार और चार लाइनें हमने लिखी हुई थी, अच्छी लगे तो फिर बताइए। गमों की आंच पर आंसू उबाल कर तो देखो, गमों की आंच पर आंसू उबाल कर तो देखो, चढ़ेगा रंग किसी पर डाल कर तो देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी कम होगी किसी के पांव का कांटा निकाल कर तो देखो। अगर भगवान की प्राप्ति करना है तो दूसरा का दुख में है तो उसको सुखी कर करके देखो, तभी तो भगवान मिलेगा। अगर वो दुखी में है और आप और उसको दुखी कर रहे हैं तो भगवान की प्राप्ति कभी होने वाली नहीं है। अब समय कम है, आभा मम्मा ने बोला ये हमारी माँ है जो आज यहाँ तक लेकर के आई है, अभी एक वर्ष के हुए हैं अभी हम, क्योंकि ज्ञान मार्ग में अभी हमको एक वर्ष हुआ है, तो अभी हम अपने आपको एक ही वर्ष का कहेंगे। और फिर अब आगे जब अम्मा है तो फिर माँ का हाथ जब सिर पर रहता है तो परमात्मा की प्राप्ति तो अपने आप से करा देती है। ओम शांति, थोड़ा जोर से बोलिए, ओम शांति, ओम शांति।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। धन बल बुद्धि बल ज्ञान बल शरयन एको काम एक बार सब मिलकर कहो जय सीताराम। ओम शांति। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि जैसे हमारे पूर्व आचार्य वृंद ने बताए कि आप सब लोगों के बीमारी में फंसा है ऐसा लग रहा है। श्री राधे, श्री राधे। आज बड़ा सौभाग्य का अवसर है कि आप सब लोगों के दर्शन करने का अवसर मिला, और हमारी पूजनीय दादी जी के आज मुखारविंद से जो सुंदर अमृत वचन सुनने का अवसर मिला तो उनके चरणों में कोटि कोटि नमन है। यहां लाने वाली हमारी जो लक्ष्मी बहन जी हैं उनको बहुत बहुत प्रणाम है। जो भगवान से जोड़ने का काम कर दे वो सबसे श्रेष्ठ होता है। को मार्ग से जो सदमार्ग में ला दे उससे बड़ा कोई श्रेष्ठ नहीं होता। तो आज, और जैसे हमारे आचार्य जी ने बताया कि जब ठाकुर जी चाहेंगे, बाबा चाहेंगे तभी आएंगे, तो 3 वर्षों से हमारी टिकट बनते बनते कैंसिल हो जाती थी, और इस बार असंभव था, इच्छा नहीं थी तो अचानक बन गई। तो जब ठाकुर जी चाहते हैं, बाबा चाहते हैं, तो उंगली पकड़ करके खींच लेते हैं। अपने सोचने से कुछ नहीं है, समय बहुत कम है। शिव जी के संबंध में 2 बातें अगर कहेंगे, बाबा की बहुत कथा हुई, बाबा की बहुत बातें हुई, ये तो आध्यात्मिक बात और उस परमात्मा से जुड़ने की बात है। लेकिन उस परमात्मा के बाद में सांसारिक यदि हम हैं तो संसार के भी सुख चाहिए, और संसार के सुख चाहिए तो भी बाबा की ही शरण में जाना पड़ेगा। भोलेनाथ जी निराकार और साकार दोनों स्वरूप पे आए हैं। भोलेनाथ जी के जीवन में, शिव जी के जीवन में बड़े कष्ट आए हैं, जिसको हलाहल पान करना पड़े, विष ही पान करना पड़े, उसके जीवन में कैसी व्यवस्था होगी। जंगल में रहने वाले हैं, कैलाश पर्वत पर। किसी ने पूछा कि महाराज आप यहां रहकर के इतने प्रसन्न क्यों रहते हैं, आपके जीवन में यदि देखा जाए तो देखिए भोलेनाथ जी कहां हैं, कैलाश पर्वत पर। और उनके परिवार में थोड़ी सी यदि ध्यान डाला जाए तो बोले कि भोलेनाथ जी प्रसन्न भी हैं और दुखी भी हैं। नारद जी जाकर के पूछे प्रभु ऐसा क्यों, जो प्रसन्न होगा वो दुखी नहीं हो सकता, जो दुखी है वो प्रसन्न नहीं होगा, लेकिन आप में दोनों कैसे हो सकता है। तो भोलेनाथ जी के सुंदर चित्र पर, जब स्वरूप पर विचार किए तो भाव आता है कि भोलेनाथ जी के मस्तक में चंद्रमा है, और चंद्रमा में क्या है, अमृत भरा हुआ है। शरद पूर्णिमा का पावन पर्व आता है तो हमारे महाराज जी सुंदर उत्सव मनाते हैं और खीर बना करके रखते हैं कि इसमें अमृत की बूंद गिरेगी, अमृत की वर्षा होगी। थोड़ी से नीचे उतरते हैं तो शिव जी के गले में क्या है, विष है। अब कहीं अमृत और विष क्या साथ में हो सकते हैं, संभव है? जहां अमृत होगा वहां विष नहीं होगा, जहां विष होगा वहां अमृत नहीं होगा, पर शिव जी के जीवन में दोनों है।
जटाओं में गंगा है, गंगा का मतलब होता है जल, और तीसरे नेत्र में ज्वाला है, ज्वाला का मतलब है अग्नि। जहां जल होगा वहां अग्नि नहीं होगी, जहां अग्नि होगी वहां जल नहीं होगा, लेकिन भोलेनाथ जी के जीवन में दोनों है। भोलेनाथ जी के साथ में रहते हैं भूत प्रेत, और भोलेनाथ जी लपेटते क्या है, भभूत। भूत को जब भगाने की आवश्यकता आती है तो भभूत की जरूरत पड़ती है, बोले लिया भस्मी झाड़ दो, तो जहां भूत होते वहां भभूत नहीं होती, जहां भूत होती वहां भूत नहीं होते, पर भोलेनाथ जी के साथ में दोनों है। भोलेनाथ जी के गले का हार जो है वो क्या है, सर्प है ना, और गणेश जी का वाहन क्या है, मूसक है। सर्प का भोजन क्या है, मूसक है ना, वो थोड़ी से नीचे आता है गले का हार, तो मूसक भगवान कहते हैं प्रभु यदि स्वामी जी का गले का हार नीचे आएगा तो हमें ऊपर जाना पड़ेगा। इतने में कार्तिकेय जी का वाहन क्या है, मोर। मोर कहता है चिंता मत करो नीचे आने दो, मोर का भोजन क्या है, सर्प, बोले नीचे आने दो हम बैठे हैं। माता जी का वाहन क्या है, सिंह, और भोलेनाथ जी का वाहन क्या है, नंदी। सिंह का भोजन क्या है ना, विचित्र स्थिति है। भोलेनाथ जी जंगल में रहते हैं, पर्वतों में रहते हैं, अम्मा जगदम्बा हिमालय की पुत्री, हिम मतलब बर्फ, हिमालय की पुत्री जो फुल एसी में रहने वाली है वो जाकर के पर्वत में रहती। भोलेनाथ जी का भोजन भांग, धतूरा, बेलपत्र, और मां जगदम्बा का भोजन छप्पन भोग, हलवा पूड़ी आदि। मां जगदम्बा के जो श्रृंगार है 16 श्रृंगार, और भोलेनाथ जी निर्वस्त्र है दिगंबर। इसके बाद में मन में भाव आया कि ये एक साथ में इतने परेशानियों के साथ में जितने विचित्रता है तो ये प्रसन्न कैसे रहते हैं, कारण क्या है। नारद जी ने पूछा महाराज किसी के घर में एक टेंशन हो जाती है, टेन मतलब 10, सन माने सूर, 10 सूर की गर्मी उसके ऊपर हो जाती है, दुबला पतला व्यक्ति भी जब टेंशन में आता है तो लगता है पूरी पृथ्वी को हिला देगा। तो महाराज आपके पास भी टेंशन नहीं होती, परेशानी नहीं होती। भोलेनाथ जी ने कहा नहीं, प्रसन्नानंद नीलकंठम दयाल, मैं सदा प्रसन्न रहता हूं। बोले इसका कारण क्या है, कुछ तो उद्देश्य होगा, कौन सी औषधि का पान करते हैं। भोलेनाथ जी ने कहा जब टेंशन बढ़ती है तो मेरे पास एक औषधि है, उसका पान कर लेता हूं। और वो औषधि कौन सी थी, भोलेनाथ जी ने कहा जाकर के मैं समाधि लगा लेता हूं, बैठ जाता हूं, और अंतरात्मा में जो शिव जी के आराध्य श्री राम हैं, तो हृदय में राम है, राम राम का जप करते हैं, और ऊपर गले में विष है, विष जाकर के राम से जुड़ जाता है तो विश्राम बन जाता है, और उसी में उनको आनंद की अनुभूति होने लगती है। भोलेनाथ जी का कहना है कि जो हमारे पास आते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कितने भी परेशानी में क्यों ना हो, ये तो हमारे कर्म के प्रभाव हैं। जैसा हम कर्म करेंगे उसको तो भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मो शुभाशुभम नावक्तम चीयते कर्मो कल्प कोटि सतैरपे। जो हम कर्म करेंगे उसको तो भोगना पड़ेगा, चाहे जैसे होगा। स्वभाव ये है, प्रभाव ये है कि इसके परिणाम स्वरूप यदि हम बाबा की शरण में चले जाते तो स्पर्श करके चला जाएगा। और बाबा कौन है, भोलेनाथ कौन है, वो परम पिता है, नित्य आप सबको बताया जाता है। और पिता जो है तो पुत्र से कभी ऐसा नहीं चाहता कि हमारे संतान को कष्ट हो। एक पिता थे, एक राजा थे, उनके तीन पुत्र थे, तीनों में आपस में लड़ाई हुई तो पिताजी से जाके बोले कि देखो बड़े को ज्यादा दे रहे हो, छोटे को कम दे रहे हो, आपस में झगड़ा हुआ। पिताजी ने सोचा कि कुछ उपाय किया जाए, एक दिन बुलाए और तीनों बेटा को एक एक थैली पकड़ा दिए और बोले इतना सुंदर संसार सागर में आम के फल लगे हुए, अभी हम जब से आए हैं तो एमपी में तो ऐसे फल नहीं मिले, पर यहां बहुत सुंदर आम के फल दिखे हैं पूरे में। तो बोले आम का बगीचा है, इस बगीचे में जाओ और समय है सुबह 10 बजे से 5 बजे के बीच में, इन फल को तोड़ करके लाओ। तीनों बच्चे बड़े प्रसन्न हो गए, झोली को लिए चले गए, और जाते हैं तो जो मेहनत करने वाला था, तपस्वी था, वो गया तो चुन चुन करके मीठे मीठे फलों को तोड़ करके अपनी थैली में भर लिया। दूसरा कुछ आलसी है तो वो जाकर के लेट गया, बोले अभी तो धूप है, समय बहुत है, 5 बजे तक का समय है, जाते समय तोड़ लेंगे, एक थैला में भरने में समय क्या लगेगा। जब आधा समय हो गया, दूसरे ने उठाया तो जल्दी जल्दी से गया, कुछ कच्चे आम तोड़ा, कुछ पके आम तोड़ा और एक थैला में भर लिया। तीसरा और आलसी था तो वो सो रहा था, जब जाने का समय आया तो उससे जगाया गया, भैया चलो 5 बजने वाला है। तो वो उठा, उठने के बाद बोला कौन पिताजी, हमसे पूछेंगे देखेंगे। तो नीचे जल्दी जल्दी में जो मिला, कुछ गोबर भर लिया, कुछ पत्थर भर लिया, कुछ कच्चे आम भर लिया, जो मिला उसी को भर लिया और ले करके गए तीनों पिताजी के पास में। देखो पिताजी हमने बड़ी मेहनत करके आए। पिताजी ने कहा कि एक काम करो, इन तीनों को एक कमरे में बंद कर दो और 8 दिन तक जिसने जो फल लाया है उसी को खाए करके रहेगा। अब तीनों जाकर के जैसे बंद हो गए तो अपने अपने थैली ले लिए। जब थैली लेकर के बैठते हैं तो जिसने मेहनत करके पके पके आम को तोड़ा तो आराम के साथ आनंद के साथ खा करके उसका 8 दिन व्यतीत हो गया। दूसरा जो कच्चे और पके को खाए तोड़ा था वो कुछ खट्टे मीठे इसको खा करके कुछ क्रोध में कुछ प्रसन्नता से समय कटा। और जो आलसी था उसके सामने गोबर है पत्थर है तो रो रो करके कट रहा है। और जैसे इस समय कटे तीनों पहुंचे तो पिताजी ने कहा देखो भाई समय हमने सबको बराबर दिया, बगीचा एक है, समय एक है, अब आपके कर्म के ऊपर निर्भर है, जो किए वही मिला। वह परमात्मा भी हमको समय सबको बराबर दे रहा है, इतने वर्ष जाना उसी संसार में भेज रहा है, लेकिन इस संसार में आकर के आलसी व्यक्ति रो रो करके समय काट रहे हैं और जो तपस्वी हैं वो सुंदर शिव बाबा के भजन करके अपना सुंदर सदगति को प्राप्त हो रहे हैं। यही मूल तत्व है और भगवान की शरण जाने से और यहाँ आने से यही प्राप्त हुआ। बातें तो बहुत सारी हैं पर समय बहुत कम है, जाना भी है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति। बाहर तो दुनिया में अगर संतों की वाणी सुनना है, उनका लाभ लेना है, तो उनकी सभा में जाकर के आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है। लेकिन आज हमारा कितना सौभाग्य है कि संत हमारे बीच में स्वयं चलकर आए हैं और अपनी वाणी का लाभ हमको पहुंचा रहे हैं। मन तो करता है सुनते जाए, लेकिन समय और सब चीजों की सीमाएं होती है। और दूसरी बात कि संत जब हमारे प्रांगण में पधारे तो ये हमारे सौभाग्य की बात होती है, और उनका हम सत्कार सम्मान कर पाए ये और भी सौभाग्य की बात होती है। तो मैं हमारे आदरणीय और राधा दीदी जी सामने बैठे आपसे निवेदन करता हूं, आप मंच पर आए। आदरणीय गोपी दीदी जी, आप संतों को गोपी दीदी जी तिलक द्वारा संतों का सम्मान कर रहे हैं, राधा दीदी जी पुष्पों के द्वारा संतों का सम्मान करेंगे। मैं गीता बहन से अनुरोध करता हूं आप भी मंच पर आए और फूलों के द्वारा सम्मान करें। ये बाबा की बगिया के पुष्प है, जब तक आप साथ में रखेंगे इसकी महक की अनुभूति करते रहेंगे। जी फोटो ले लो, ये ले लो, ले लो, ले लो। अभी हम क्लास को बाबा की याद में कुछ क्षण बैठ करके संपन्न करते हैं, लेकिन उसके पहले एक समाचार आप सभी को देते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे ज्ञान सरोवर में मेजर साहब, सभी मेजर साहब के नाम से ही उनको जानते हैं, जो जब से ज्ञान सरोवर बना है तब से सिक्योरिटी की जो सेवाएं हैं उसका पूरा संचालन पूरा संभाल आप करते हैं। वैसे हरिनगर दिल्ली से आप थे और आपने अपनी पोस्टिंग पर कहीं होते हुए शायद ज्ञान लिया, वो हमें पक्का पता नहीं है, लेकिन हरिनगर में आपका लौकिक परिवार रहता था। कल अचानक रात को उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनको फिर हॉस्पिटल लेके गए, पर वहां देखा तो पंछी अपना पिंजरा छोड़ करके उड़ चुका था, बाबा की गोद में वह समा गए। और कुछ डिटेल ज्यादा पता नहीं है, जैसे समाचार मिलेगा वो विस्तार से फिर कल बहन जी बताएंगे आपको, लेकिन अभी हम कुछ क्षणों के लिए बाबा की याद में बैठकर उस आत्मा के लिए योगदान अवश्य करेंगे और फिर क्लास भी संपन्न करेंगे। ओम शांति।